अगला चैप्टर देखेंगे।
अनियतु, नियत के मसाइल, वही बाब आप देख रहे हैं कि हर किताब के ऑलमोस्ट आगाज में ये बाब है, क्योंकि नियत जो है वो असल में आमाल की कबूलियत के लिए एक बहुत बड़ी दलील बन जाती है कि नियत कैसी थी। आमाल के अजर सवाब का दारोमदार नियत पर है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को इसकी नियत के मुताबिक बदला मिलेगा। जिसने दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत की, इसे सिर्फ दुनिया ही मिलेगी और हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की, इसे बस औरत ही मिलेगी और हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इस पे बात पहले काफी दफा हो चुकी। अगली बात, दिखावे का रोजा शिर्क है। हजरत शद्दाद बिन औस कहते हैं रदी अल्लाह अन्हो, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। इसे अहमद ने रिवायत किया। अब देखिए कि दिखावे का नमाज रोजा कब रखा किया जाता है, जब लोगों पे अपनी दीनदारी का रोब डालना हो, या लोगों में ये मशहूरी करनी हो कि मैं तो बहुत रोजे रखता हूँ या नमाज पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि दिल का बड़ा खोटा ही होगा कोई शख्स जो ये सोच के अपने आप को मुश्किल में भी डाले, सारा दिन भूखा प्यासा भी रहे सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे रोजेदार कहें। तो आपको क्या मिला? हाँ, यानी बाज दफा लोग हमारे लिए इतने अहम हो जाते हैं कि उनके लिए हम अपने आप को मुश्किल में भी डाल लेते हैं, लेकिन वो काम करते हैं लेकिन अजर उसका नहीं मिलता। अगली बात, रोजे की नियत दिल के इरादे से है। मुरव्विजा, मुरव्विजा कहते हैं जिसका रिवाज हो, मशहूर, कॉमन, जिस जो हमारा कस्टम बन चुका है। मुरव्विजा अल्फाज व बिसोमिन गदन नवई तू सुन्नत से साबित नहीं। आप अक्सर कैलेंडरों पे भी देखते होंगे, दुआओं की किताबों में रोजा रखने की दुआओं में ये दुआ सिखाई जाती है कि मैं, ये लफ्ज पढ़े जाते हैं। हालांकि अगर आप इसका तर्जमा पढ़े ना, तर्जमा करें उर्दू में, तो क्या बनता है, वह और बी सौमिन सात रोजे के गदन कल के नवाईतु मैं नियत करता हूँ। यानी आज के रोजे की आप नियत नहीं कर रहे, आप कल के रोजे की नियत कर रहे हैं। ये सही सुन्नत से साबित नहीं है। अगर किसी का अमल है तो बात पद पहुंच गई तो उसको छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले करना जरूरी है। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अनहा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने फजर से पहले रोजे की नियत ना की इसका रोजा नहीं। इसे अबू दाऊद और तिरमिजी ने रिवायत किया। ये बात समझने की है, फर्ज रोजे की नियत, यानी रात सोते वक्त। अब नियत करने से मेरा ये नहीं कि कुछ लफ्ज अदा करने, बस नियत थी कि मैं रखूंगी, और फर्ज रोजा तो रखना ही होता है। हाँ, ये सूरत हाल कब पेश आती है, मसलन आपको कल दोपहर 2 बजे के करीब रोजे के लिए एक कहीं सफर पे निकलना है। अब आप सोच में पड़े, मैं रोजा रखूं कि ना रखूं, सफर में रुख्सत भी है, छोड़ भी सकती हूँ, रख भी सकती हूँ, तो आपको फजर की नमाज से पहले पहले फिर डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बरक्स नफली रोजे की नियत, अगला मसला आ रहा है कि नफली रोजे की नियत दिन में जवाल से पहले किसी भी वक्त की जा सकती है, और नफली रोजा किसी वक्त भी किसी भी वजह से तोड़ा जा सकता है। दोनों की दलील सही मुस्लिम की रिवायत हजरत आयशा से रदी अल्लाहु अन्हा, एक दिन नबी अकरम मेरे घर तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हमने कहा कि नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर मेरा रोजा है। किसी और दिन फिर अल्लाह के नबी हमारे घर तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, हैस यानी हलवे की एक किस्म थी जो लोग खाते थे, हैस हैस तोहफे में आया है यानी हलवा। आपने फरमाया, तो लाओ, मैं सुबह से रोजे से था। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। इन दोनों बातों से क्या पता चला? पहली बात, फर्ज रोजे के लिए फजर से पहले पहले आपको जहन में, माइंड में डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कल रोजा रखना है कि नहीं रखना, यानी जो दिन शुरू हो रहा है, ठीक है। नफली रोजे का मामला इससे फर्क है, आप कुछ नियत भी नहीं करते, रात को सोए ठीक थे, कुछ हर्ज नहीं था, जैसे भी हुए सुबह उठे, आप सोचते हैं क्यों ना मैं नफिल रोजा रखना था रख लूं, चले आज पीर है आज रख लूं, जो मेरा आता है रख लूं। हाँ, फर्ज रोजा कोई आपका छुटा हुआ था पहले से, जैसे पीरियड्स के या किसी बीमारी के, अगर उसकी नियत करेंगे वो गैर रमजान के भी, उसके लिए फिर वही शर्त है कि आप फिर फजर से पहले नियत करेंगे। लेकिन नफिल किसी भी मौके पर किसी तरह कर सकते हैं। बाज दफा आप उठते हैं, आपका खाने को दिल ही नहीं करता, तबीयत बोझल है, कुछ नहीं है, चले 12 बज गए कुछ नहीं खाया। अब आप जैसे मिसाल है सर्दियों में दिन 2-2.5 बजे दोपहर होती है, तो आप कहते हैं क्यों ना मैं रोजा ही रख लूँ, तो आप फिर अगर उस वक्त हैं तो इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह नफली रोजा रखा हुआ है, किसी वजह से बगैर किसी वजह के कोई नहीं तोड़ना चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, उजर से तो फर्ज भी टूट सकता है, लेकिन नफिल बगैर उजर के भी टूट सकता है। हाँ, किसी को पसंदीदा चीज खाते देखा तो रोजा तोड़ लिया। हाँ, तब देखिए कि कितना प्यारा दीन है ना, अल्लाह के फर्ज किए हुए और हमारी तरफ से जो फर्ज किए हुए जो नफिल या मन्नत की सूरत में होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगला चैप्टर है अस सहूर वल इफ्तार, सहरी और इफ्तारी के मसाइल। सहरी खाने में बरकत है, नींद से उठ जाने के बाद जानबूझकर सहरी तर्क नहीं करनी चाहिए। दलील, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। अब देखिए कि रोजे का असल फलसफा भी यही है, तब खाओ जब खाने को दिल नहीं करता। अमूमन मुश्किल लगता है सुबह खाना, आदत जब ना हो खास तौर पे, या नाश्ते की आदत थी लेट थे, बाद लोग मतलब जूस पी लेते हैं या कुछ भी नहीं पीते, कोई दूध पी लेता है, लेकिन सहरी के नियत से खाना उस वक्त मुश्किल लगता है, तो कहा जाता है खाओ। और आपने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी का है, फर्ज नहीं है। जहां फतवे हम बहुत लोग जल्दी देते हैं, भी आज मेरी आंख नहीं खुली तो फिर क्या हुआ, आज रोजा ही नहीं रखा, तो भाई क्या हुआ, रोजे का इससे क्या ताल्लुक है। हमारे यहाँ बाद इसको आठ पहरा रोजा कहते हैं। वैसे भी अब देखिए कि जो रात सोने तक माशाल्लाह खाते ही पीते रहे, तो अगर सहरी में कुछ ना भी खा सकें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दफा उठ गए फिर चाहे खजूर खाएं और चाहे आप पानी पिए, खाना चाहिए। और यहाँ ये जहन में रखिएगा कि सहरी खाने से मुराद पराठे खाना नहीं है, और वो भी दही के साथ। हमने खास तौर पे कुछ चीज़ों का अपनी ट्रेडिशन बनाया हुआ है, तो ऐसी बात नहीं, कुछ भी खा लें जो आप खाना चाहें, लेकिन ज़रूर खाएं। रमज़ानुल मुबारक में फजर की अजान से पहले सहरी के लिए अजान देना सुन्नत है। हज़रत आयशा से रिवायत है, हज़रत बिलाल रात को सहरी से कबल अजान दिया करते थे। आपने फरमाया उस वक़्त तक खाओ पियो जब तक इब्ने उम्मे मकतूम अजान न दे दें, इसलिए कि इब्ने उम्मे मकतूम उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक फजर ना हो जाए। इसे सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। तो एक किस्म की ये पहली अजान जो है ये वेकअप कॉल भी हो जाती है कि उठ जाओ, वक्त हो गया, अब सहरी का वक्त जो है, तो अगर उस वक्त कोई मतलब पहली अजान देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इफ्तार में जल्दी करना और सहरी में देर से खाना अंबिया कराम का तरीका है। दलील, अबू दरदार रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन बातें इखलाक नबूवत में से हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। पहली चीज, रोजा जल्दी इफ्तार करना। जल्दी से मुराद क्या है, अव्वल वक्त, जू ही वक्त हुआ बस बिस्मिल्ला पढ़े। बाज दफा बगैर बिला वजह किसी देर की जाती है, मैंने देखा है लोग खजूर हाथ में पकड़ के अजान की आवाज सुन के दुआ के लिए हाथ खड़े कर लेते हैं, फिर वो उनका ख्याल होता है अब इस वक्त जितनी दुआएं मांगनी है मांग लो, गैर मसनून है, आपका रोजा बातिल हो जाएगा अगर आप अजान सुन के या वक्त जब हो गया और उसके बाद जान बूझ के आप ये कहें कि अच्छा थोड़ा और लेट कर लूँ, लंबा रोजा हो जाए। अल्लाह को हमारे लिए कोई मुश्किल में डालना नहीं है, यानी अल्लाह ताला हमें मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसलिए अपने आप को हल्का फुल्का रख के अगर हम फौरन करें इंशाल्लाह रोजा इफ्तार करना होगा। दूसरी चीज, सहरी देर से खाना। देर से खाने से मुराद ये कि आखिरी वक्त तक खाना, बस आप जैसे आप कहें अच्छा रात को सोने से पहले कुछ खा लूँ, हो जाएगी सहरी, हो जाएगी इंशाल्लाह, 2 बजे खा लूँ, हो जाएगी, लेकिन बेस्ट टाइम क्या है, जो फजर की नमाज से बिल्कुल पहले का वक्त है। और तीसरी चीज, नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना, ये क्याम में जब हम हाथ बांधते उसकी तरफ इशारा है। इसे तबरानी ने रिवायत किया। सहरी खाते हुए अजान हो जाए तो खाना फौरन तर्क करने की बजाय जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए। दलील, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई आदमी अजान सुने और पीने का पानी इसके हाथ में हो तो उसे फौरन न रख दे बल्कि अपनी जरूरत पूरी कर ले। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। ये भी अब देखिए हमारे मैनमेड मसलों में से एक मसला है, अजान की आवाज सुन के फौरन हाथ का नवाला भी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। एक और भी जहन में चीज रखिए कि अजान का कोई बराह रास्त सहरी के खत्म होने से ताल्लुक नहीं होता, ये तब हमारी ट्रेडिशन में, और बाद दफा कहते हैं अजान होती जाए तो खाते जाओ, आखिरी अजान का वक्त हो रहा है, यानी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला भी मुस्कुराते ही होगा हमारी खुद साख्ता शरीयतों पे। अब जो इन मुल्कों में रहते हैं जहाँ अजान ही नहीं होती तो वो बेचारे फिर सहरी छोड़े ही ना खाते ही रहे। हमारे यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छा एक और कसरा सुनना, कहीं और से अजान हुई है, खुद ही फिरका वारियत को हम हवा देते हैं कि अजानें होती रहें, फिर कोई कहेगा नहीं नहीं ये दूर की देर की अजान है, अब ये शिया की है, ये फलां की है, ये वहाबियों की है, यानी खेल रहे हैं दीन के नाम पर। तो सिंपल बात यह है कि खा रहे हैं कुछ तो पूरा करके ख़त्म कर लें। اور اس میں خاص طور پہ پینے کا ذکر ہے. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. یعنی اب کوئی سائرن نہیں. پھر ایک ہمارے ہاں پاکستان میں سائرن بجنے کا بھی رواج ہوتا تھا ایک دور میں، سحری اور افطاری کے وقت میں. یہاں تو نہیں آپ بجاتے، میرے لیے پولیس آ جائے گی اگر آپ نے سائرن اس وقت بجائے تو. ہاں تو بہرحال جب دن رات آ جائے، دن چلا جائے، یعنی بس جو وقت ہو گیا تو اس وقت کھول لیا جائے. پھر اس میں ایک انہوں نے وضاحت لکھی ہے، اس کو بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں، لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا. اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا. اور ایسے ایکسپیرینس ان لوگوں کو بہت ہوتے ہیں جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، یعنی بعض دفعہ روزے لمبے ہوتے جاتے ہیں. آپ اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ سے کہ چلتے ہیں اور اگر آپ روزے سے تھے، آپ وہاں سے چلتے ہیں تو شام کا وقت ہے، لیکن آپ جتنا آگے آتے جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو دن چھوٹا ہوتا ہے. جب امریکہ سے آپ ایسٹ کی طرف آتے ہیں نا تو دن چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ یہاں وقت جلدی ہوتا ہے، لیکن جب آپ ادھر سے ادھر جاتے ہیں نا تو پھر دن لمبا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ روزہ اتنا لمبا ہو جائے گا آپ کا، اسی لیے سفر میں چھوڑنا ہی پسندیدہ ہے، لیکن بعض دفعہ بہت انیوژل ٹائم ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ موجود ہوں وہاں کا وقت دیکھیں گے، اور بعض دفعہ جہاز اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ روشنی ہی روشنی رہتی ہے اور وقت کا تعین نہیں ہوتا، تو اسی سہولت کو اللہ تعالیٰ نے پھر رکھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو بھی اس کی مطلب رخصت ہے. تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے، نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں. ہے نا ہمارے یہاں یہ مسئلہ، بعض لوگ نمک کی چٹکی سے رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ پہلے نمک سے کھولیں. شاید اسی سے پکوڑوں کو جائز کیا تھا کہ اب نمکین چیز کھائیں گے. نہیں، جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجوروں جس کو چھہارے کہتے ہیں ان سے افطار کرتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ٹیبل پہ ہو، لیکن پہلے آپ کھجور کھائیں. اگر کھجور نہیں لیکن اور کچھ ہے تو پھر پہلے پانی پئیں اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. مسنون کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ترجمہ اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب ان شاء اللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اور یہ آپ کب پڑھیں گے؟ جب کھجور یا پانی کھا لیں گے، کھولنے کے بعد پڑھی جائے گی. یہی زیادہ مسنون ہے. ہمارے ہاں ایک دوسری دعا عام مشہور ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت. جی، تو اس کی سند بہت سٹرانگ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے، یہ مجھے پتہ ہے تھوڑی سی مشکل ہے. کسی آپ میں سے کسی کو آتی ہے یہ دعا پہلے سے یا پڑھتے تھے؟ تو ایک دفعہ پھر دہرا لیں. پھر ذہب الظما وابتلت العروق عروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس کا ترجمہ ہی دیکھ کے بہت محبت آتی ہے نا، اور واقعی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک کمزوری کو جان لیا، اور اس وقت فیلنگز بالکل یہی آ رہی ہوتی ہیں روزہ کھولنے کے بعد. روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. اس کی دلیل حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. اب اس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو کبھی اتنا ہوتا ہی نہیں کھانا کہ کسی کو کھلائیں، تو آپ نے کہا کھجور، کھجور نہیں تو پانی. یعنی اس سے پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی افطاریاں بنائی جائیں. کھجور آپ مسجدوں میں بھیج دیں جہاں لوگ آتے ہیں. بعض دفعہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ اپنے کام سے سیدھا آتے ہیں مسجد میں، گھر نہیں وہ پہنچ سکتے، تیسی جگہ پہ اگر آپ کچھ بھی بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا، لیکن آپ اس نام پہ بڑی بڑی افطاریوں کا اپنے لیے جائز کر لیں اور نمازیں بھی اپنی قضا ہوں تو وہ چیز پسندیدہ نہیں. اس پہ ہم نے بات اپنی وہ شہر رمضان بک میں اور دوسری جو بک ہے سوم رمضان، اس میں کافی ڈیٹیل سے کی ہے کہ روزے کی روحانیت زائل نہیں ہونی چاہیے اور ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کی اپنی نمازیں قضا ہوں اور اسپیشلی افطاری کے وقت آپ اتنے لمبے لمبے دسترخوان بنا رہے ہیں، کتنا قیمتی وقت جو ہے آپ کا جو دعائیں مانگنے کا ہے، اس وقت آپ شربت اور کہیں پکوڑے اور کہیں ٹیبل سجا رہے ہیں، ایک گھر میں شور شار ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ خود بھی 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیے اور وہ دعائیں مانگے. آپ لوگ اس وقت جو فیل کر سکتے ہیں وہ بعد میں وہ فیلنگس نہیں آئیں گی، کچھ نہیں بھی کمی رہ گئی کھانے میں بعد میں بنا لیں، لیکن اس وقت کو بہترین طریقے سے انسان استعمال کرے. روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے. آپ بھی پڑھیے، افطر عندکم عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آج تک کتنی افطاریاں کی ہیں، کسی نے اپنے ہوسٹ یا میں صاحب خانہ کو یہ دعا دی، یا آپ کو کسی نے دی، یا آپ نے کسی کو دی، تو پھر اسی سے دیکھیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں. یعنی روزے تو رکھتے ہیں، کھاتے ہیں دوسروں کے گھر سے، بلکہ نقص ہی نکال کے آتے ہیں، اور یہ دعا اگر کسی کو مل جائے روزہ رکھوانے والے کا، ساری تھکن دور ہو جائے، کتنی پیاری دعا ہے. فرشتوں کی دعائیں، رحمتیں، نیک لوگ کھانا تمہارا کھائیں اور روزے دار تمہارے گھر میں رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں دعائیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اسی سے دلوں کے کینے اور بغض ختم ہو جاتے ہیں. ہر موقع پہ دعائیں، ہر موقع پہ دعا، اس سے دلوں میں کینہ بغض رہ ہی نہیں سکتا. ہم ذرا سی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کے ساتھ ایک دوسرے کو دعائیں دیں یا لیں ان سے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہماری ویسی سالو ہو جاتی ہیں.